ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी लास्ट टाइम नाभि से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम ये बहुत अद्भुत स्थान पर आए हैं। जब भी हम यात्रा निकालते हैं तो इस स्थान पर जरूर आते हैं, क्योंकि ये स्थान कलयुग में बहुत सारे स्थान लुप्त होते जा रहे हैं, और जहां जहां पवित्र स्थान थे वहां बिल्डिंग्स और शहर और कंपनियां और इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई हैं। इसलिए धाम का जो अनुभव है वो हमें बहुत कम मिलता है। नासिक जो हम अभी रहते हैं, नासिक के अंदर वो हाईवे है, इतने सारे दिन रात ट्रक चलते हैं वहां पर, कितने सारे शॉप्स हैं वहां पर, तो धाम होते तीर्थ होते हुए भी हमें उसका अनुभव प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमको दिखता क्या है, बहुत सारे दुकान हैं, लोग हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं। लेकिन जब ऐसे वातावरण में आते हैं तो तीर्थ या धाम क्या हो सकता है, उसका थोड़ा अनुभव हमको मिल सकता है। और जरूर हमको हमारे परिवार को लेकर इस जगह पर आना चाहिए, ऐसी जगह पर आना चाहिए। वृंदावन धाम की भी ऐसी अवस्था है। अगर आप वृंदावन टाउनशिप में जाएंगे तो उधर कम से कम सैकड़ों आश्रम मिलेंगे आपको, बहुत लोगों की भीड़ मिलेगी, आवाज शोर मशगूल, लाउड स्पीकर्स, दुकानदारों के कैसेट सीडीज सब जगह बजते रहते हैं। वो सब कोलाहल में कैसे भगवान को ढूंढना, ये भी मुश्किल बात है बहुत। लेकिन जैसे ही आप वृंदावन शहर से हटकर कहीं बाजू में गांव में जाएंगे, पूरे ब्रज का आपको दृश्य मिलेगा, आनंद मिलेगा, और लगेगा कि आप ब्रज में हो। उसी तरह से ये जो निसर्ग रम्य स्थान है, यहां पर कई लीलाएं हुई है, आपने कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं एक ही जगह पर हुई है, और ये फिर भी बहुत लोगों को पता नहीं है स्थान। हमें भी ऐसे ही अचानक एक दिन मालूम पड़ा था, जब हम डॉक्टर्स लोगों को लेकर सबसे पहले ही यहां पर यात्रा निकाल के आए थे। बहुत सुंदर अनुभव हुआ यहां पर, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है ये। तो सबसे पहली कथा यहां पर ऐसी आती है कि भगवान के एक अवतार हुए हैं कपिल देव। तो कपिल देव जी ये भगवान के अवतार हैं, अंश अवतार हैं वैसे तो। उनके पिताजी का नाम था करदम मुनि और माताजी का नाम था देवाहुति। और ये देवाहुति के पिताजी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन देवाहुति इतनी सुंदर थी मानव होते हुए भी कि ऐसे वर्णन आता है उनके बारे में कि जब वो अपने महल के छत पर खेला करती थी बचपन में, तब उसका सौंदर्य देखने के लिए देवता अपने हवाई जहाज से आते थे और उसके महल में हमेशा मंडराते रहते थे। वैसे वर्णन आता है कि कई देवता अपने हवाई जहाज से बेहोश होकर नीचे गिर जाते थे उसका सौंदर्य देखकर, इतना सौंदर्य उसका बहुत ही प्रसिद्ध था। और केवल सौंदर्य के लिए वो प्रसिद्ध नहीं थी, उनके पिताजी ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से वैष्णव तरीके से संगोपन किया था, और उसके अंदर एक साध्वी होने के हर गुण उपस्थित थे। और उनके पिताजी का भी कैसा विशेष स्थान है कि उन्होंने जब अपने पुत्री का विवाह करना चाहा तो लोग कैसे करेंगे, राजा के लड़के तो राजा के बराबर पुत्र होना चाहिए, राजपुत्र होना चाहिए, किसी देश का राजा होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, सेना होना चाहिए। लेकिन ये जो पिताजी थे ये इतने धर्मपरायण थे कि उन्होंने परम तपस्वी कर्दम मुनि से उनका विवाह किया। वो कर्दम मुनि की क्या अवस्था थी, तो जंगल में रहते थे, एक कुटिया में रहते थे और कई कई महीने वो कभी कभी खाना भी नहीं खाते थे, उनको होश ही रहते नहीं थे भगवान के भजन में। और बहुत मतलब दाढ़ी बड़ी हुई, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर युवक है, बहुत ही आकर्षक शरीर दृष्टि है उनकी, लेकिन पूरे राज्य में, पूरे देश विदेश में, आर्यावर्त में उनका ख्याति था एक परम श्रेष्ठ संत के रूप में। तो अपने पुत्री के कल्याण के लिए वो कर्दम मुनि से उनका विवाह करते हैं और ये हमारा आदर्श है। आजकल हम जब विवाह करते हैं तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि पैसा कितना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बाद में एजुकेशन देखते हैं, और कुछ कुछ लोग जाति देखते हैं बहुत कि भाई इसी ब्राह्मण के घर में होना चाहिए और वो साउथ इंडियन अयंगारी चाहिए और उत्तर भारत में वही ब्राह्मण चाहिए जो चित पावन है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन रहते हैं उसके अंदर। लेकिन वो अगर शराब पीता रहेगा तो चलता है, नो प्रॉब्लम, शराब चूहा सिगरेट सब दो तीन लव अफेयर्स हो गए तो भी चल जाता है उनको, लेकिन जाति होनी चाहिए बढ़िया से एकदम। इतना भौतिक प्रमाण हो गया है इस इन चीजों का, लेकिन कर्दम मुनि से साथ विवाह करके देवाहुति के पिताजी ने एक आदर्श स्थापन किया हमारे लिए कि अगर विवाह करना है अपने पुत्री का या पुत्र का तो केवल कृष्ण भावना किस संबंध से बढ़ेगी, कृष्ण भक्ति किस संबंध से बढ़ेगी, वही संबंध करना है और उसमें कोई और प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस विवाह करने से पुत्री की कृष्ण भावना बढ़ेगी, पुत्री के जीवन का जो उद्धार करने का कार्य है, जन्म मृत्यु के श्रृंखला से मुक्त होने का जो कार्य है, जो उद्देश्य हमारे जीवन का है, वो अगर उस संबंध से परिपूर्ण होता होगा तो संबंध होना चाहिए। इसलिए भौतिक दृष्टि से पूर्णता विसंगत होने पर भी कर्दम मुनि से जो एकदम कफल्लक थे, भिक्षुक थे, राजकन्या जो राजमहल में पली थी, जिनके पैर कभी जमीन पर गिरे नहीं थे, ऐसे पली हुई राजकन्या जो उन्होंने कर्दम मुनि से विवाह किया, जिनके पास में कोई धन दौलत नहीं, कोई नरम नरम गद्दे नहीं, कुछ नहीं, ना सेविका है, ना बड़े बड़े प्रसाद है, ना अच्छा अच्छा छप्पन भोग है, ना सुंदर अलंकार है, सुंदर वस्त्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी चीज भौतिक दृष्टि से देवाहुति के पिताजी से और कर्दम मुनि से कोई मिलती जुलती नहीं है, फिर भी बड़े गर्व के साथ, बड़े विश्वास के साथ में देवाहुति के पिताजी ने उनका विवाह कर्दम मुनि से किया। और देखिए शादी होते क्या होता है, ससुराल जाती है तो कहाँ जाती है, जंगल जाती है, जंगल में कुटिया में रहती है, और कर्दम मुनि के पास में कुछ साधन नहीं है कुछ चीज के, और बहुत खड़तर जीवन है, कंदमूल खा के जीते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तो ऐसे भाव में भी वो बड़ी लगन से, यही उसकी महानता है कि इतने बड़े घर की कन्या होने पर भी वो बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से और बड़ी लगन से तपस्या को स्वीकार करते हुए, सहन करते हुए सारे प्रकार के जो माहौल थे जंगल के सब सहन करते हुए वो अपने पति की सेवा करती, और कई दिनों तक वो सुंदर शरीर था उसका, बहुत देवता भी बहुत सराहते थे, वो सब क्रुश हो गया, बहुत दुबली हो गई वो, कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी अपने पति की सेवा से नहीं छोड़ी। अंतिमता उसकी सेवा पर प्रसन्न होकर कर्दम मुनि ने उसको 9 कन्याओं को प्राप्त कराया, 9 कन्या प्राप्त हुई, और 9 कन्या प्राप्त होने के पश्चात जो पुत्र हुआ वो हुआ कपिल देव, जो भगवान के अंश अवतार थे। ऐसे कर्दम मुनि थे हाँ, जिनके एक बार संपर्क करने से उनको एक ही साथ 9 कन्या प्राप्त हुई, इसे कहते हैं वीर्यवान पुरुष। और उसके पश्चात क्या हुआ, स्वयं भगवान उनके वीर्य से जन्म लिए, और 5 साल की अवस्था में कपिल देव जी भगवान ने अपनी माता का उपदेश किया है और वो इस जगह उपदेश किया है। और जब ही उनका जो उपदेश है उसको सांख्य शास्त्र नाम, सांख्य योग नाम से जानते हैं, जो भगवान भी गीता में थोड़ा वर्णन करते हैं लेकिन भागवत में उसका विस्तार रूप में वर्णन है। सांख्य योग का संक्षेप में बताया जाए तो किस तरह से पृथ्वी का निर्माण किया गया है, कौन से तत्वों से पृथ्वी के निर्माण किया गया है, जीव सृष्टि कैसे बनी है, अचर सृष्टि कैसे बनी है, जीव सृष्टि कैसे बनी है, और कैसे कैसे ये तत्वों का रूपांतर अवयव में होता है, और कैसे इन तत्वों का ही लाभ लेकर अंतिमता इन तत्वों से मुक्ति प्राप्त करनी है, ये जो टेक्निकल एनालिटिकल नॉलेज है सांख्य योग कहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये 24 तत्वों से बना है। आप लिख सकते हैं इफ यू वांट इंटरेस्टेड। ये सारे तत्व जो हैं, ये भगवान विष्णु, गर्भोत्कचाई विष्णु, सबसे पहले भगवान नारायण के तरफ से महाविष्णु को प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण तक जो भगवान के विस्तार हैं, जैसे हमने कल बताया था, भगवान बलराज जी में विस्तारित होते हैं, बलराम जी, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव इस चतुर्व्यूह में विस्तारित होते हैं। संकर्षण से और एक संकर्षण उत्पन्न होते हैं, उनसे भगवान नारायण उत्पन्न होते हैं। यहां तक कि जितने भी भगवान के विस्तार हैं, एक्सपांशन हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत के नियंत्रण करते रहते हैं। उनका भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं है। नारायण जी का जो विस्तार है, भगवान महाविष्णु, वो पहले ऐसे व्यक्तिमत्व हैं जो भौतिक जगत में उनका निवास है। वो कारण सागर में शयन करते हैं और उनके श्वासों से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। श्वास लेते ही, श्वास जब छोड़ते हैं तो उनके शरीर के रंध्रों से अनंत ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं, फिर परिपक्व होते हैं और वो ब्रह्मांड बन जाते हैं। उन ब्रह्मांडों के अंदर हर ब्रह्मांड में एक गर्भ उत्तरशाही विष्णु होते हैं, जिनको हम शेष नाग पर लेटे हुए देखते हैं, जिनके चरण के पास में लक्ष्मी देवी सेवा कर रही है। वो दृश्य जो है वो एक गर्भोदकशाही विष्णु, एक ब्रह्मांड के अंदर का दृश्य है। तो महाविष्णु एक है और ऐसे अनंत गर्भोदकशाही विष्णु है, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु है। तो महाविष्णु ये 24 तत्व जो है फिर गर्भोदकशाही विष्णु को देते हैं और उनके द्वारा वो ब्रह्मा जी को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर इन तत्वों को लेकर, रॉ मटेरियल इनको लेकर, पहले वो अचल सृष्टि बनाते हैं और फिर बाद में जीव सृष्टि होती है। तो हम और आप जो है अनंत यू, जो 84 लाख योनियां हैं, इनका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान विष्णु कराते हैं। प्रजोत्पादन, अनेक प्रजापतियों का जन्म देते हैं वो, उनके द्वारा अनंत योनियां उत्पन्न होती है। सर्प योनियां, कीटक योनियां, मछली योनियां, वृक्ष योनियां, सस्तन प्राणी योनियां, पंछी योनियां, अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, राक्षस योनि, देव योनि, दानव योनि, असुर योनि, ये सभी योनियों का वर्णन श्रीमद् भागवत में 3rd स्कंद में दिया है, निर्माण के स्कंद में। आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत रोचक विषय है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। लेकिन कभी कभी हमको कथा सुनने के भाव में इसलिए पढ़ने को बोर भी हो सकता है। वेरी टेक्निकल नॉलेज, वेरी सिस्टमैटिक। यहां तक कि जब जटायु मिलते हैं श्री कृष्ण भगवान को, जटायु जब मिलते हैं तो भगवान उनसे परिचय पूछते हैं, तो जटायु अपने पूरे वंश का, कश्यप दिति से लेकर पूरे वंश में कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे वो गरुड़ के भतीजे हैं ये समझाते हैं पूरा। गरुड़ की माता और इनकी माता जो है वो भांजी, मतलब भांजी थी, तो गरुड़ उनके चाचा लगते हैं। ये पूरा वर्णन जो है सृष्टि का, नियम का, निर्माण का वो रामचंद्र को सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे इस वंश में आता हूं। तो गिदड़ का वंश है और गरुड़ जी का वंश है और सब सर्प योनियां है, सभी वो सबका वर्णन करते हैं। तो ये 24 तत्व क्या है आप लिख लीजिए। पहले जो है 5 ज्ञानेन्द्रियां, सबसे पहले लिखिए आप पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल, इज दैट राइट? पृथ्वी तत्व, अवकाश तत्व, फिर अग्नि, फिर वायु और फिर जल। सबसे स्थूल तत्व जो है पृथ्वी तत्व है, उसके बाद में जो तत्व है सूक्ष्मता में आगे बढ़ता हुआ जल, उससे भी सूक्ष्म जो है वायु, उससे भी सूक्ष्म जो है अग्नि, उससे सूक्ष्म जो है अवकाश, स्पेस। ये 5 मूलभूत महाभूत है और ये 5 महाभूतों से 2 प्रकार के वस्तुएं बनती है। एक वस्तु है ज्ञानेन्द्रिय और एक वस्तु है कर्मेंद्रिय। तो 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय हैं, वो क्या क्या है? 2 हाथ, 2 पैर, स्वर यंत्र, जननेन्द्रिय और एक मैं हमेशा भूल जाता हूं, हाँ नहीं, कर्मेंद्रिय की बात कर रहे हैं हम, हाथ, हाँ, और पेट, उदर, उदर, हाँ। तो 2 हाथ, 2 पैर, उदर, वाचा, वाचा यंत्र और जननेन्द्रिय, ये पंच महाभूत के रूपांतर है। पंच महाभूत से बनते हैं लेकिन कन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होने के बाद में उनसे ये इंद्रिया बन जाते हैं। फिर 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हमारे दिमाग में ज्ञान के रूप में प्रवेश करता है वो केवल इस पांच गेट से ही आता है। वो कौन से पांच गेट है? एक है आंखें, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा जिह्वा और पांचवा त्वचा। ठीक है, फाइव सेंसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञानेन्द्रिय। कितने हो गए? 15 हो गए। अब ये पांच जो ज्ञानेन्द्रिय है इनके पांच विषय है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, जिनका ये इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। मतलब आंखों के लिए सुंदर दृश्य जो है, रूप, ये आंखों का विषय है। अलग अलग रूप को देखना चाहते हैं आंख जो है, सुंदर रूप जो भी है, पेड़ का रूप हो, स्त्री का रूप हो, पुरुष का रूप हो, या कोई सुंदर नजारा हो, या और कोई सुंदर वस्तु हो, आंख अपने आप को तुष्ट करना चाहती है सुंदर रूप को देखकर। कान तुष्ट करना चाहते हैं अपने आप को ध्वनि, ध्वनि ये कान का विषय है, कान की विषय वस्तु ध्वनि है, और ध्वनि से हम अपने आप को सुंदर म्यूजिक सुनना है, स्तुति वचन सुनना है, अपने बारे में गौरव सुनना है, तो बहुत आनंद आता है, बहुत आत्मा को बहुत खुशी होती है। तो ध्वनि जो है वो कान का विषय है। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श है, तो व्हाट इज द त्वचा विषय कॉल्ड एज, एनीवे, तो त्वचा का विषय आप स्पर्श लिख सकते हैं, लेकिन स्पर्श करने लायक जो वस्तु होती है, जो स्पर्श करके हम समझ सकते हैं कि भाई ये डंडी है, ये लंबा कार है, इसको हाथ लगाएंगे समझे कि ये गोल गोलाकार है, ये उसका विषय है। तो स्पर्श ज्ञान जो है इसी से हम शरीर का भोग देना चाहते हैं। स्पर्श ज्ञान शरीर के भोग में सबसे प्रविष्ट है। फिर क्या बचता है? नाक। नाक का जो विषय है वो गंध है, यानी कि खुशबू या बदबू जो भी होती है, गंध ये नाक का विषय है। और क्या बचता है आखिर लास्ट में? जिह्वा। तो टेस्ट यानी स्वाद, ये हमारी जिह्वा का विषय है। ठीक है, तो शब्द रूस रूप रस, रस यानी कि वही स्वाद, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये पांच जो है, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय के विषय है। कितने हो गए अभी? 20 हो गए। और उसके आगे तीन गुण, सत्व रज और तम, इन तीन गुणों से 23 तत्व पूरे होते हैं, और 24वां तत्व है महातत्व। ये महातत्व की व्याख्या ऐसे की गई है कि महाविष्णु के पहले नारायण जी है, नारायण जी के बाद में विरजा नदी आती है बीच में, जो भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से विभाजित कर देती है, और उसके आगे एक बहुत बड़ा बादल है, इतना गहरा और काला बादल है कि उसकी छाया के अंदर सारे भौतिक जगत विराजमान है। उसके आगे सारे जगत जो है वो प्रकाशमान है, भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। भगवान का शरीर, भगवान जो है वो गोलोक वृंदावन में विराजमान है, उनके शरीर से जो आभा निकलती है नीले रंग की, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और ये ब्रह्म ज्योति जो है उसका प्रकाश पूरे निर्माण में, जहां पर भगवान ने सृष्टि निर्माण किया है, सब जगह विराजमान है। कुछ सृष्टि चिरंतन है, वो नष्ट नहीं होती है, और ये सृष्टि जो है वो बनकर बिगड़ती है, फिर बिगड़ती है, फिर बनती है, ऐसे उनका सृजन और विनाश होते रहता है, सृजन पालन और विनाश तीनों होते रहता है। तो ये सारा जो भौतिक जगत है, ऑल मटेरियल क्रिएशन इज अंडर द शैडो ऑफ दैट महातत्व, द बिग क्लाउड। तो ये जो 24वां तत्व हो गया, तो ये 24 तत्वों से मिलकर ये भौतिक सृष्टि बनती है। और हमारा शरीर कितने अलग अलग प्रकार का है, लेकिन हर शरीर में ये 24 तत्व विराजमान है। कैसे कैसे हम दिखते हैं, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं हमारे, हमारा रूप, लेकिन है एक्चुअली क्या? 24 तत्व। जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? ये 24 तत्व में वो विलीन हो जाते हैं, जिस पर हम इतना प्रेम करते हैं, इसको सवारते हैं, सजाते हैं, बालों के लिए अलग इंडस्ट्री, स्किन के लिए इंडस्ट्री, कपड़ों के लिए इंडस्ट्री, खाने के लिए कितने बड़े बड़े प्रयोजन यहाँ बनाए गए हैं, हर प्रकार के इंद्रियों के लिए, हर प्रकार का आनंद देने के लिए यहाँ पर इतनी व्यवस्था है, इतने करोड़ों के बिजनेस किए जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? या तो उसको गिदड़ खाते हैं किसी धर्म में, या तो जमीन में दफना देते हैं और वो पृथ्वी में नेचुरली एक रूप हो जाते हैं, या तो अग्नि से द्वारा अवकाश में विलीन हो जाते हैं। ये हमारी वैल्यू है एक्चुअली, दिस इज आवर वैल्यू। लेकिन ऐसा सब नश्वर शरीर होने पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने लायक ऐसी है कि जब ये पंच महाभूत एकत्र होकर मनुष्य शरीर बनाते हैं, मनुष्य का शरीर बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। बाकी सारी योनियों में भी जो कीड़े मकोड़े में जो तत्व है वही हमारे अंदर है। कुछ तत्व विकसित है, कुछ तत्व नहीं विकसित है, लेकिन तत्व वही है। प्रिंसिपली दे आर ऑल सेम। जैसे जितनी कीड़ों को खाने की इच्छा होती है और खाने से आनंद मिलता है, उतना ही हमको भी रोटी पकौड़ी खाने से आनंद मिलता है। आनंद की जो परिभाषा वो सेम है। जब कुत्ता जब गाड़ी के नीचे सोता है रास्ते पर और सुबह उठता है और हम रात को घर में सोते हैं उठते हैं, आनंद की व्याख्या परिभाषा वही है, सुख समाधान की परिभाषा वही है। जो उनको प्राप्त होता है वही हमको प्राप्त होता है। हम लोग केवल उसको बर्तन में और प्लेट में और चमचे से और उसको सजा सजा कर और वो अलग अलग शेप के प्लेट में डालकर खाते हैं, लेकिन आनंद जो प्राप्त होता है उसकी परिभाषा सेम है सबके लिए। लेकिन जब मनुष्य जीवन का रूप धारण कर लेती है ये पंच महाभूत और बाकी सब तत्व लोग तत्व, तो इसे एक अलग वैल्यू उत्पन्न होती है, क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन से जो दिमाग उत्पन्न होता है वो शक्ति भगवान ने डाल दी है, इन्वेस्ट की है, जिससे उनको हम समझ सकते हैं। बाकी किसी भी दिमाग में भगवान ने उस शक्ति को नहीं दिया जिससे हम उनको समझ सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म में उसको कहते हैं सार असार बुद्धि या सद सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं उसको। ये हमारे कल्याण के लिए क्या आवश्यक है और हमारा कल्याण किस पे नहीं है, ये समझने की जो अकल है ये अकल मनुष्य को भगवान ने दी है। और सबके पास ही अकल है, राक्षस के पास भी अकल है, क्योंकि राक्षस भी मनुष्य योनि के ही ऊपर के योनियां हैं, लेकिन राक्षस लोग उसी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। रावण ने किया था, रावण ने, हिरण्यकशिपु ने, हिरण्याक्ष ने किया था, लेकिन मनुष्य योनि में हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में चले जाए या अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति करें। यही संक्षेप में सांख्य शास्त्र है, ये दूसरे स्कंद में भागवतम में दिया है। तो यहां पर कपिल देव के मुख से देखिए, जैसे ही माता कपिल देव सुनने बैठती है तुरंत निचला आसन ग्रहण करती है और कपिल देव व्यास आसन में बैठ जाते हैं और मम्मी माता को उपदेश करते हैं। तो माता पुत्र को गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए शिष्य के रूप में श्रवण करती है और वो श्रवण करने मात्र से माता का उद्धार हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करने के समय उनकी माता जो है नदी बनती है, कपिला नदी। और वही नदी यहां पर जो धारा बह रही है वो कपिला नदी की धारा है। यही नदी आगे जाकर तपोवन में, आपको मैंने बताया, कपिला गोदावरी का संगम होता है वहां पर। तो यह नदी यहां से उत्पन्न होती है और वो पानी यही इसमें आता है, यहां से वो लुप्त हो जाती है और फिर वो वहां प्रकट होती है और वहां से जाकर गोदावरी को मिलके फिर आगे पश्चिम बंगाल को मिल जाती है। तो ये इस जगह का मूल लीला है। दूसरी लीला इस जगह की ऐसी है कि जैसे हमने आपको सुबह बताया कि जैसे रावण सीता को हर ले गया, फिर राम और लक्ष्मण लौट के आए और देखा कि सीता नहीं है तो शोक करने लगे। राम सब जगह पे पेड़ों को, पत्तों को, पंछियों को पूछने लगे, पुकारते पुकारते कि कहीं मेरे मृगनयनी को आपने देखा है, कहीं मेरी प्रिय विदेह कुमारी को आपने देखा है। इसे सामान्य व्यक्ति की तरह रो रहे हैं पत्नी के खोने पर। हा? तो आश्चर्य हो सकता है हमको कि ये परम भगवान, परम पुरुषोत्तम 64 गुण वाले परम भगवान कैसे हो सकते हैं, ये साधारण अपनी पत्नी को खोने पर इतना विरह करते हैं, इतना रोते हैं। हम तो उनसे भले हैं ऐसा हम समझ सकते हैं। तो वो यहां पर पुकारते पुकारते, सब दंडक वन का ही भाग है, पूरा दंडक वन ही है, पूरा मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग से आरंभ होता है और आंध्र प्रदेश के उत्तर भाग तो चलते रहता है, महाराष्ट्र को कवर करते हुए। तो यहां पर वो पूछते पूछते आ रहे हैं, पेड़ों को गले लगा रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं, रो रहे हैं, पूछ रहे हैं, वन देवताओं को पूछ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं। तो यहां से शिवजी और पार्वती जी ऐसे अपने विहार कर रहे थे यहां पर। तो पार्वती जी देखती हैं, अरे श्री रामचंद्र जी रो रहे हैं पत्नी के विरह में। तो पति को कहती हैं, हे स्वामी, कि ये आपके आराध्य परमेश्वर हैं, देखो कैसे विलाप कर रहे हैं, केवल एक स्त्री का स्त्री को विरह प्राप्त करने से इतना विलाप कर रहे हैं। तो शंकर जी हंस पड़ते हैं, तो ये लीला कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे लगता नहीं ये तुम्हारे परम भगवान है, ये तो मुझे एक सामान्य व्यक्ति लगते हैं, एकदम सामान्य व्यक्ति, केवल एक पत्नी को खोने पर इतना दुख करते हैं। तो जाओ, नहीं नहीं मैं कसौटी करना चाहती हूँ, परीक्षा करना चाहती हूँ। तो पार्वती जी, जब भी आप सोचिए सीन कैसा है, राम और लक्ष्मण ऐसे, राम पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, राम नदियां बह रही अश्रुओं की, शरीर में कंपन हो रहा है, अश्रु वाला प्रवाह हो रहा है, पागल की तरह ऐसे सभी सृष्टि के सब जीवों को पुकार रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ है। तो उनके सामने पार्वती जी सीता जी का स्वरूप धारण करके खड़ी हो जाती है। हे स्वामी मैं तो यही हूँ। तुरंत प्रभु रामचंद्र दंडवत प्रणाम करते हैं, मातेश्वरी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मतलब उनको पहचान जाते हैं कि पार्वती जी है, तभी जाकर पार्वती जी भी उनको प्रणाम किया है। तो समझ जाते हैं कि लीला कर रहे हैं वो। तो भगवान जो है वो सबसे विरक्त है, उन्हें कोई पत्नी के कोने पर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जन सामान्य को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए, एक मर्यादा आदर्श स्थापन करने के लिए भगवान ये सब कष्ट सहते हैं। परम पुरुषोत्तम वैकुंठनाथ होने पर भी जंगल में रहते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, कंदमूल खाते हैं, पर्णकुटी में रहते हैं, राक्षसों के बीच में कोई सुविधा नहीं है, ऐसी जगह रहते हैं। राजमहल में रहने के योग्य होने पर भी लौकिक दृष्टि से भी वो राजपुत्र थे। हा? कितना अपमान होता है उनका। कल राजाभिषेक हो रहा है और आज के दिन उनका बोल रहे हैं कि चलो अभी आप जंगल में जाओ। ऐसे नहीं कि केवल राजाभिषेक कैंसिल हो गया, किसी और का होगा, ऐसे नहीं। नेक्स्ट डे इज इन फॉरेस्ट। और कितना महान चरित्र है प्रभु रामचंद्र का। इतना बड़ा ड्रामा करती है कैके ही। हा? पहले कोप भवन में जाती है, काले वस्त्र पहनती है, सब गहने उतार के लेट जाती है। उनका एक कोप भवन नाम का हुआ करता, जब भी रानियां क्रोध करती थी वो कोप भवन में जाके एक्सप्रेस करती थी उसको। फिर खबर मिलती थी कि रानी कोप भवन में गई, मतलब राजा को जाके उसको बनाना है। तो ये सब कुछ मंथरा के द्वारा भड़काने के पश्चात कैकेयी जाती है और कोप भवन में लेटती है और काले वस्त्र पहनती है। और दशरथ जी की सबसे प्रिय पत्नी थी वो। दशरथ जी आते हैं, मनाते हैं, वो बात नहीं करते उनसे, बहुत कठोर वचन बोलती है। फिर वो कहते, याद है आपको एक बार जब आप युद्ध में जख्मी हो गए थे तो मैं आपके साथ में थी और बेहोश अवस्था में आपको मैंने रण से निकालकर बाहर ले गई थी और आपको मैंने आपके जख्मों को पट्टी करके आपको अच्छी अवस्था में मैंने लाया था, फिर दोबारा युद्ध करने के योग्य बनाया था। उस समय आपने कहा था कि आप वर मांग लो, मैं आपको दो वर दूंगा। तो मैंने कहा था कि मैं किसी योग्य समय मांग लूंगी, आज मुझे वो दो वर चाहिए। तुझे दो वर की बात कर रहे हो, मैं मेरी जान भी दे सकता हूं आपके लिए, मांगो, इसके लिए इतना आप कोप कर रही हो। और जैसे ही वो दो वर मांगती है, दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं, सह नहीं पाते उन शब्दों को, जैसे वज्राघात उनके हृदय पर होता है और जमीन पर गिर जाते हैं। फिर उठते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। उनको वो विचार ही सहन नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा दूसरा पुत्र भरत राजा बनेगा और पहला पुत्र जो योग्य राजा बनने के हैं वो जंगल में जाएगा, वलकल पहनेगा, 14 वर्ष तक कंदमूल खाएगा। कितना भयंकर कल्पना की करने के लिए भी बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो बेहोश हो जाते हैं विचार करके, फिर होश में आते हैं, फिर विचार करते, फिर बेहोश हो जाते। ऐसे करके करके दशरथ राजा जो शनि महाराज से उन्होंने युद्ध किया था, इतने भयंकर योद्धा थे वो, एकदम हतबल हो गए इसके सामने। और रघुकुल की रीति की वचन दिया है तो उसको तोड़ नहीं सकते। तो पहले ही वो मान ले, बोलती है देखो आप वर दिए ऐसे पहले बोलो, फिर मैं वर मांगूंगी। बोला आप जो चाहे वर मांग लो, मैं अभी कहता हूं कि उसको पूर्ण कर दूंगा। आज तक रघुकुल के किसी राजा ने दिया हुआ वचन अपूर्ण किया ऐसे नहीं हुआ है। मतलब ऑलरेडी दे चुका है ना, जो उन्होंने वचन, उन्होंने जो वर मांगे वो दे चुके ऑलरेडी उनको। जब वो सुन रहे हैं तो उनको खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे कैसे वर मांग देने के लिए हाँ कर दी। तो फिर वो इतने कठोर वचन बोलते हैं, उसके ऊपर इतने कठोर वचन बोलती है कि अगर आपको इतराज हो रहा है, आपको अगर हिम्मत नहीं हो रही है, आपके जबान में इतनी शक्ति नहीं है, तो मैं अपने मुख से उसको बोलूंगी। क्योंकि बोलते मैं नहीं उसको बोल सकता हूं, मैं नरक में जाऊंगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाऊंगा मेरे पितरों के सामने और राजाओं के सामने, ऋषियों के सामने, ब्राह्मणों के सामने। तो समझ आती है कि बोल नहीं पाएंगे, ये बहुत ज्यादा भावनावश हो गए। बोले उनको बुलाओ और मैं बताती हूं। तो जब वो रामचंद्र जी, देखिए आप क्या वातावरण है, सब अयोध्या में सब जगह पर खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि सबके प्रिय युवराज रामचंद्र जी, इनका कल राज्याभिषेक होने वाला है। सब जनता जो है आनंदी है, सब जगह सुगंधित ज्वल द्रव्य छिड़काए गए हैं, सब जगह दीपकों की रोशनी की गई है, सब जगह फूलों की आरास की गई है, सब लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, सब लोग अच्छे अच्छे व्यंजन घर में बना रहे हैं, सब जगह पर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, स्वस्ति वचन गाए जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा वातावरण है। क्योंकि रामचंद्र जी का कल अभिषेक है, आज शाम है और कल सवेरे भोर के समय रामचंद्र जी का अभिषेक हो जाएगा। ऐसे वातावरण में प्रभु रामचंद्र सीता जी को मिल रहे हैं, सीता जी श्रृंगार कर रही है, कौशल श्रृंगार कर रही है, कैकई श्रृंगार कर रही, कैकई नहीं सुमित्रा श्रृंगार कर रही, सब लोग तो आनंद में है एक्सेप्ट कैकई और मंथरा। और ऐसे वातावरण में प्रभु रामचंद्र कैकई के आदेश के अनुसार आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और क्या देख रहे हैं, पिताजी बेहोश पड़े हैं, रो रहे हैं, कैकई काले वस्त्र पहनकर को भवन में खड़ी है, बहुत गुस्से में है और बहुत कठोर वचन बोलती है कि आपके पिताजी ने, उनको हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, लेकिन मुझे दो वर दिए हैं कि मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा और तुम 14 साल वनवास में जाओगे। तो क्या कहते रामचंद्र जी, बस इतनी बात थी, इसलिए इतना दुख हो रहा है, यहां पर इतना कष्ट हो रहा है, इतनी यातना सब लोग सह रहे हैं, मैं तो अभी चला जाता हूं। एक ही क्षण में मन में एक भी कंपन नहीं आता उनके, एक भी ऐसे लहर नहीं आते कि ऐसा क्यों, व्हाई दिस इज हैपनिंग, एक प्रश्न नहीं पूछते हैं, मन से भी नहीं पूछते, हृदय से भी नहीं पूछते, अपने आप से भी नहीं पूछते, केवल इतना कहते कि केवल इतनी सी बात थी तो आप मुझे वैसे ही वहां संदेश भेज देते, बुलाने की आवश्यकता क्या थी, मैं वहीं से जंगल चला जाता। कितना बड़ा त्याग है रामचंद्र जी का, ये हम यकीन नहीं कर सकते। हम अपने आप को उसमें, आप कल्पना कीजिए कि आप अगर स्थिति में हैं, कल आप राजा बनने वाले हैं और आपको कहा जाता है वन फाइन इवनिंग, फाइन आवर ऑफ द डे, कि टुमारो यू आर गोइंग टू फॉरेस्ट फॉर 14 इयर्स, तो क्या अवस्था होगी हमारी, जंगल में कैसे होगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या जख्म होंगे, कितने जंतु काटेंगे, क्या सुरक्षा होगी, कोई गारंटी नहीं किस चीज की। और वनवास का कुछ नियम होता है, वन में भी एक जगह रह सकते नहीं है, जगह जगह बदलना पड़ता है। मैंने कल बताया ना आपको कि एक जगह अच्छा वो रिवर देख के, अच्छा फल के पेड़ देख के अच्छी तरह रह जाओ, ऐसा नहीं होता है, उससे भी आसक्ति नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए वनवासी लागू। तैसे प्रभु रामचंद्र थे, केवल रावण का आतंक जब बच गया बहुत ज्यादा, देवी देवता परेशान हो गए हजारों हजारों साल के लिए, तब देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में विष्णु से विनती की थी कि इसका आप उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने संदेश दिया था कि मैं आ रहा हूं रघुकुल में जन्म लूंगा, और क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए हैं उसमें मनुष्य और जानवर के लिए उन्होंने वरदान नहीं मांगा है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप सारे देवता जो है, आपके अंश जो है, वो बंदर के रूप में आप प्रवेश कीजिए, वानर बनकर वानर कुल में आप सब लोग जन्म लीजिए, और मैं स्वयं रघुकुल में आऊंगा मेरे 3 भाइयों के साथ। तो सारे देवता जो हैं, इंद्र वरुण सोम सभी, वायु चंद्र सभी जो देवताएं हैं, उनके पुत्र जो हैं वो वानर रूप में जन्म लेते हैं, और पृथ्वी में बड़ा एक बहुत ऐसा आनंदमय वातावरण उत्पन्न होता है कि सब जगह पर बड़े बड़े शक्तिमान वानर जो है, नल नील सुग्रीव वाली अंगद, ऐसे बड़े बड़े महान योद्धा देवताओं के अंश रूप में वानर रूप में जन्म लेते हैं। और ये सब जो है एक लिखा हुआ ड्रामा है जो वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, नारद मुनि जी की कृपा प्राप्त होने पर वाल्मीकि जी पहले ही स्क्रिप्ट लिखते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, रामायण होने के कई हजारों लाखों साल पहले सत्ययुग में वाल्मीकि का नारद मुनि ने उद्धार किया था, और तब उन्होंने ये महाकाव्य लिखा था, वो इसके अनुसार परम भगवान एक्सेप्ट करते कि मैं इसका रोल करूंगा, आई विल एक्सेप्ट दिस रोल, तो रोल ही अदा कर रहे हैं जब पेड़ों को पूछ रहे हैं, तो वो स्क्रिप्ट में लिखा है कि किरदार जो है वो पेड़ों को पूछेगा मेरी पत्नी कहां है, लेकिन बीच में ड्रामा भंग होता है, कोई और व्यक्ति आता है तो वो दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम माता जी आपको मेरा सादर प्रणाम है, हरे कृष्णा। तो पार्वती समझती है कि भगवान कितने महान है, ये आराध्य क्यों है, इसी के लिए तो आराध्य है कि हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए ये अपना दिव्य वैकुंठ धाम आनंदमय धाम छोड़कर इस जन्म मृत्यु से भरे हुए भव रोग से भरे हुए लोक में आते हैं, और हम जैसे जीवन जीते हैं, खाते पीते रहते सोते, हम जैसा कष्ट सहते हैं, सब प्रकार के दुख सहते हैं, हमारे लिए कितना समय उन्होंने सीता के साथ बिताया अपने हजारों वर्ष के जीवन में, टोटल 11,000 साल मेरे ख्याल से वो पृथ्वीतल पर रहे, केवल 14 इयर्स वो साथ में रहे वनवास में पत्नी के साथ में, बाकी सारा समय विरह में बिताया उन्होंने, एक मर्यादा को स्थापन करने के लिए कितने सारे कष्ट उन्होंने उठाए। तो यहां पर उन्होंने वो एक साबित कर दिखाया है पार्वती जी को कि परम भगवान में क्या वस्तु है। तो फिर शंकर जी प्रसन्न होकर फिर यहां से चले जाते हैं। यही वो जगह है यहां पर जो पर्वत राज आप देख रहे हैं, इसके बीच में एक बहुत बड़ा तालाब है। और जब हनुमान जी संजीवनी को लेकर आकाश में उड़े थे तो जाने के, आप जानते हैं ना कि तीन राक्षसों ने उनका यहां पर परीक्षा किया था, मतलब वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रतीक है। वो पहला कहते हैं कि सो जाओ, मतलब तमोगुण, थोड़ा विश्राम तो कर लो, इतने दूर से भाग के आ रहे हो, थक गए होंगे, थोड़ा सा स्नान कर लो, थोड़ा लेट लो, ये तमोगुण है। और उसके बाद में मुझे दो ठीक से याद नहीं आ रहे, किसी को याद है? तो जब लेके आते होते हैं तो काल ने मेरा राक्षस जो है, जो रावण के द्वारा भेजा गया है, तो वो उनको रोकता है, एक साधु के रूप में प्रवेश वहां पर बैठता है, भजन करता है, उनको रोकता है, विनती करता है आप रुको। तो फिर हनुमान द्वारा उस रावण कालनेमी का वध होता है, वो इसी जगह पर हुआ है, पहाड़ के ऊपर जहां पर बड़ा तालाब है बीच में इसके पूर्व दिशा में। और यहां पर क्या हुआ है, यस, यहां पर ही अपने थोड़े सैकड़ों वर्ष के इतिहास के पहले ही ज्ञानेश्वर जी ने एक मृत बामन को यहां का जल पिलाकर जीवित जीवन प्राप्त करा दिया था। बहुत अद्भुत जगह है वैसे ही, बहुत ही अद्भुत जगह है। तो ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं यहां पर हुई है और यहां से ही कपिल नदी का उगम होकर आगे जाके गोदावरी से मिलती है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
प्रसाद
इथे घ्यायचा, हाँ इथेच ना, हाँ इकडे आणून घेऊ ना, हाँ हाँ, कपिला नदी गेटिंग कम्प्लीटली सेल्फ रिअलाइज्ड आफ्टर हिअरिंग द मेसेज फ्रॉम अ सन, शी बिकम्स टोटली टोटली ओब्लिवियस टू द बॉडीली कन्सेप्शन ऑफ लाइफ एंड शी बिकम्स अ रिवर एंड अ सोल गोज बॅक टू गॉड हेड।